ಪ್ರಿಯಂ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಭೀಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವವಿರಿಂಚಿನುತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೀತ್ಯಾರ್ತಿಹಂ ಪ್ರಣತಪಾಲ ಭವಾಭ್ಯುಪೋತಂ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದಗುರು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುನಿಸವ ಸಂತ ನಮೋ ಹರಿರಾಮಾಮುರುಭವನಮೇಯಾಪದ ಸಮಾನಕೋಯ್ ಅಧಮ ಜೀವ ತುಮ ತಾರಿಯಾ ತುಮಿಹಿ ತಾರೇ ಸಂತ ಅವಕಿರಪಾಮೋ ಪರಕರಹೂ ಯೋ ಹರಿದೇವ ಕಹಂತ ಸದ್ಗುರು ಸೇತಿ ವಿನತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸು ಪರಣಾಂ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಂತ ರಾಮದಾಸ ನಿಷದಿನ ಕರುಣ ಸಲಾಂ ನಮೋ ರಾಮ ಗುರುದೇವದಿ ಧನತ್ರಿಕಾಲ ಕೇವಂದ ವಿಘ್ನಹರಣ ಮಂಗಲ ಕರಣ ರಾಮದಾಸ ಆನಂದ आप लोगों से परमात्मा का चिंतन नहीं हो सके तो भगवान की शरण हो जाओ। विश्वास करें कि जो कमी है वो शरण होने से एक क्षण में पूरी हो जाएगी। इस बात पर विश्वास रख करके शरण हो। कहोगे परमात्मा तो दिखते नहीं है, कैसे शरणों में? तो जिस पर विश्वास हो ऐसे महात्मा में विश्वास करो। जिस प्रकार मरने वाले आदमी को प्राय लोग डॉक्टर वेद के सुपुर्द कर देते हैं कि अब आप मर जाए जो दवाई दो, मर जाए जो करो, डॉक्टर वैद्य को खुला कर देते हो, इसी प्रकार आप अपने आप को परमात्मा के एकदम सुपुर्द कर दो। हे भगवान, अब हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। वैद्य के पास औषध हो या नहीं हो, पर या तो औषध मिलती मिलती है, वैद्य तो चाहे प्राण बचा सके नहीं बचा सके उसके हाथ की बात नहीं, परंतु यहां पूरा का पूरा लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। यदि बुद्धि बल से रहित होकर ऐसा प्रतीत होवे कि कहां जाऊं तो भगवान की शरणागति है कि हे भगवान, मैं सबसे निराश होकर अब आपकी शरण में आया हूं, बचाओ। ये सबको मत सुनाओ, एकांत में बैठ के रो, करुणा भाव से रो। जैसे कोई संसार की आफत आती है तो आदमी को नींद नहीं आए, भूख नहीं लगे, ऐसे एकांत में रो, रात में रो, सब सोए हो तो रो, बिल्कुल हार मान लो, सच्चे मन से भगवान के हो जाओ। जैसे द्रौपदी ने कहा, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, ऐसे करुणा भाव से पुकार करो तो भगवान इस भवसागर में डूबते हुए को अवश्य बचा लेंगे। ऐसा मानने में कोई हानि तो है ही नहीं, करके देखो। सबसे बढ़कर ईश्वर की शरणागति है। जबान से मत कहो, दिल से कहो, एकांत में वाणी से भी कह सकते हो, परंतु इस प्रकार से कहो कि हे भगवान, मैं शरणागति की बात बोलता भी हूं तो ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं, मेरे अंदर न प्रेम है न विश्वास है न मेरे पास कोई आधार है, न मेरे पास सत्संग का बल है, जैसे भी कह रहा हूं आप मुझे निभा लो, मैं बनावटी कह रहा हूं तो भी निभाओ, नकली बोलता हूं तो भी निभाओ, क्योंकि मैं आफत में पड़ा हूं। आप पतित पावन हो तो मैं पतित होकर आपके शरण में आया हूं, आप सबके सुहृद हो तो मेरे भी सुहृद बन जाओ, मुझे बल दो, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, केवल आपको चाहता हूं। ऐसे सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो भगवान उसकी सुनवाई करते हैं। आपको एक रहस्य की बात और बताएं, जैसे भगवान सब जगह रहते हैं उसी प्रकार भगवान की दया भी सब जगह है। आपके अंदर भगवान है तो आपके अंदर दया भी है। ऐसा नहीं कि भगवान आपके अंदर है तो दया को उन्होंने कहीं बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर है, ऐसा नहीं। वो दया सहित आपके अंदर है, कृपा सहित आपके अंदर है। तो आप घबराओ, ये दया है मिलती क्यों नहीं है। ऐसा जो दया का अधिकारी होता है वो भगवान पर अपना अधिकार जमा लेता है। शरण लेने वाले को, शरण मांगने वाले को भगवान पूरा शरण देते हैं। छलनी में जल लेने से कभी जल भरा नहीं जाएगा। छलनी और उसमें पानी डालो, इकट्ठा करेंगे, अरे वो तो छल जाएगा, नीचे निकल जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। कोई वृक्ष का थोड़ा सा पत्ता लेकर उसका आधार बनाओ, जल पियो या हाथ से पियो तो प्यास बुझेगी। तो जल है परमात्मा, और हाथ से पीना ये ज्ञान और वैराग्य, और पात्र याने महात्मा का आसरा। छेद क्या है? अश्रद्धा अविश्वास, ये छेद है। विवेक वैराग्य तीव्र हो तो काम चल जाएगा। भगवान की दया बरस रही है पर हमारे अंदर जो संसार की कामना भरी पड़ी है वो बहुत बड़ा छेद है। उस छेद में से पानी निकल जाता है, जैसे ऐसे दया निकल जाती है। यदि हम निष्काम हो जाए तो ये छेद बंद हो जाए और फिर देखो परमात्मा के प्रेम का रस हमारी प्यास को बुझाता है कि नहीं। निष्काम भाव से प्रभु की शरण लेने से शीघ्र पात्र हो जाता है, तमेव शरणम गच्छ। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि परमात्मा और महात्मा की शरण जाने से सब काम बन जाता है। महात्मा लोग मदद देते हैं, जैसे डूबते हुए को दयालु आदमी बाहर रहकर उसको निकालने का पूरा प्रयत्न करता है, ऐसे ही संसार समुद्र में डूबने वाला या तो परमात्मा की शरण या परमात्मा की शरण को जानने वाले की शरण ले ले तो वो शीघ्र ही भवसागर से पार हो जाएगा। सबसे बढ़कर तो यही उपाय है कि परमात्मा के सामने हृदय खोलकर रोकर के प्रार्थना करो। परमात्मा हारने वाले की बड़ी सहायता करते हैं, जीतने वाले की नहीं करते। सबसे बढ़िया उदाहरण सुग्रीव का समझो। सुग्रीव हारा हुआ था, भगवान ने सहायता दी। यदि भगवान बाली को सहायता देते तो हारे को भगवान, ये बात ही नहीं बनती। कमाकर खाने वाले की किसी को चिंता नहीं होती। तीन दिन से कोई भूखा बैठा हो उसको सब भोजन देने की इच्छा करते हैं। कई कई साधक ऐसे होते हैं जो अपने आप ही साधन करते हैं, उन पर भगवान की संभाल भी कुछ कम रहती है। जो उनके भरोसे रहता है उसकी संभाल करते हैं। मां के कई बेटा है, एक बेटा यदि दूर गांव में गया है तो मां उसके खाने पीने की चिंता नहीं करती, पर एक बेटा जो मां के पास ही है, मां के घर में ही है, मां उसे कई बार पूछती है, बेटा भोजन किया कि नहीं, थोड़ी देर में बेटा भोजन किया कि नहीं, वह उसको आंखों से भोजन करते देखती है तो मां का जी खुश होता है। ऐसे ही जो भगवान को साथ में लेकर के साधन भजन करता है उसके साधन भजन को भगवान देखते हैं। कोई उसके साधन में असाधन हो तो भगवान अपनी कृपा से उसको दूर करते हैं। एक एक मिनट को दामी समझो, हरदम ये सोचो कि अभी मृत्यु हो जाए तो क्या करेंगे, अनाथ के माफिक मारे जाएंगे, बहुत ऊंची जगह पर आए हुए हम लोग कहां जाएंगे पता नहीं है। हम यदि ऐसा जान गए कि मानव जीवन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, फिर हमारी ये हालत क्यों हो रही है, क्यों हम खराब हो रहे हैं। इसलिए हमारी जिनकी बुद्धि जितनी काम करे साधन भजन में अपने को लगाओ। कोई भी श्रेष्ठ काम नहीं है, साधन भजन से ऊंचा संसार में कोई आवश्यक और कोई श्रेष्ठ काम नहीं है। अपने आप से ही पूछो कि क्या इससे बढ़कर कोई काम है, अंदर से क्या आवाज आती है, सुनकर के नहीं वास्तविकता से सोचो। यदि अंदर ये भावना आती कि भाई धन कमाना हमारे लिए जरूरी है, तो फिर अपने आप को समझाओ कि धन अभी तक कमाया कि नहीं, धन कमा करके शांति कितनी कमाई, शांति तो नहीं मिली, तो फिर संतों की बात पर चलो, सत्संग करो, ऊंची से ऊंची बात में जीवन बिताओ। हमारी जिंदगी यूं ही खराब हो रही है, जैसे घाटा जिस व्यापार से लगता है बनिया उस काम को उसी समय छोड़ देता है, अरे अभी से ही घाटा लगने लग गया, आगे जाने कितना बड़ा घाटा लगेगा, छोड़ देता है, वो दूसरी लाइन पकड़ना चाहता है। ऐसे ही हम लोगों को भी अपनी लाइन बदलनी चाहिए। मनुष्य देखता घर में कोई बीमार हो जाता है तो जल्दी से जल्दी वैद्य को बुलाते हैं, बड़ी व्याकुलता होती है उसके इलाज के लिए, अपने भी बीमार पड़ जाए तो अपने भी इलाज के लिए व्याकुलता होती है। तो ये आपके लिए कोई कम बीमारी है क्या कि मानव शरीर आए थोड़े दिनों में मरने वाले हैं, फिर गर्भ में जाएंगे, फिर कष्ट पाएंगे, जाने कहां कहां जाएंगे, ये कितनी बड़ी बीमारी है। इस भवरोग की दवा के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। सबको यही समझना चाहिए कि गर्भ में बहुत दुख होता है, भगवान ने कृपा करके हमको बाहर निकाल दिया और वो दुख हमसे भगवान ने भुला दिया, परंतु अब आप सोचो कि जो गर्भ में बच्चा है वो कितना कष्ट पा रहा होगा। ये ख्याल आवे तो साधन बहुत तेज हो सकता है। जो चेतेगा वो बचेगा और जो नहीं चेतेगा वो मारा जाएगा। जिस प्रकार समुद्र से जल ऊपर जाता है और वर्षा से फिर उसी में ही चला जाता है, ऐसा चक्र करोड़ों वर्षों से चल रहा है, यही चक्र हमारे जीवन में चल रहा है। गीता कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बराबर दुख और दोष को देखो, कहां संसार में सुख है। सबको सावधान होना चाहिए, उम्र जैसी जैसी अवस्था होती है उसके अनुसार ज्ञान भी तो होना चाहिए। मूर्ख आदमी समझता नहीं है। जब मनुष्य को यह विश्वास है कि जन्म मरण के चक्कर की औषध एकमात्र परमात्मा की दया ही है, तो फिर वो इस विश्वास पर कायम क्यों नहीं रहता है। परमात्मा का प्रेम सब कुछ हो जाता है, उसका इलाज हो सकता है। भगवान के सामने रो, महापुरुषों के सामने रो, भगवान की सब पर पूर्ण कृपा है, पर जो शरण होता है वही कृपा को प्राप्त कर सकता है। वर्षा तो सब जगह बरस रही है, परंतु जिसने छत्ता लगा लिया वो वर्षा से कैसे गीला होगा। हम लोग कामनाओं की आड़ लगाते हैं, महात्मा उपदेश देते हैं और हम सुने नहीं, ये भी एक तरह से छत्ता लगाना है। महापुरुषों की कृपा नहीं मिलती। भगवान की दया गंगा की धारा से बढ़कर है, वह बढ़कर बहती रहती है। यदि कहो कि शरण प्रेम भजन ध्यान भी नहीं कर सके तो अमृत पीने की इच्छा है, बिना पात्र भी महात्मा मुंह में डाल देते हैं, ऐसे मैं भगवान की भक्ति चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, पर मैं कर नहीं सकता, मेरे पास साधन नहीं है, तो क्या भगवान जबरदस्ती हमारे मुख में अमृत दे सकते हैं? प्रश्न है। तो कहा कि यदि आप प्रेम चाहते हो तो भगवान जबरदस्ती भी दे सकते हैं, पर चाहो नहीं तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। हम तो इतना मांगते हैं परमात्मा की चाहना ही कर लो, वो पात्र हो जाएगा। शरणागति की इच्छा कर लो कि मैं शरणागत होना चाहता हूं तो भी काम चल जाएगा। डॉक्टर जैसे जबरदस्ती इलाज नहीं करता, ऐसे भगवान छोड़ते नहीं है, पर चाहना तो होनी चाहिए। अपने को असमर्थ मानो, माता को मालूम हो जाए कि बालक को अमुक वस्तु की आवश्यकता है तो वह अनेक प्रकार से उपाय करके बालक को वस्तु देती है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, वो तो आपके सही और गलत रोने को अच्छी तरह से पहचानते हैं, मां तो फिर भी नहीं पहचाने। एक कुत्ता भागता जाता था, उसके गले में गलवा पड़ा था। एक दयालु आदमी फोड़ने गया, लाठी ले गया और बोला मैं उसे फोड़ने आया हूं, पर कुत्ता विश्वास नहीं करता, भागता है तो उसके गले में वो जो गड़वा है उसको कौन तोड़ सकता है। ऐसे ही हम लोग भगते हैं, महात्मा दुखी होकर हमारा पीछा करते हैं, हमारी फांसी निकालना चाहते हैं, लेकिन हम तो महात्माओं को देखकर भागते हैं, सत्संग को देखकर भागते हैं कि कौन जाए हमारे वो जरूरी काम, हमारा ये जरूरी काम। अब महात्मा बिचारे क्या करें, दया करके रह जाओ, गड़फांस तो उसकी निकाल सकते नहीं। परंतु भगवान महात्मा से भी ज्यादा दयालु है, वहां तो वे उसके पास चले ही जाते हैं। लड़का रोता है, मां मां क्या चाहता है, वह गोदी लेने के लिए दूध पिला दे, माता काम में लगी है, लड़का रोने लगे मुझे तो कुछ खिलाओ, मुझे कुछ पिलाओ, तो माता सब काम छोड़ करके बच्चे के पास आती है। लेकिन मां देखती है कि बच्चा रोता तो नहीं है, इतने मां अपने काम में लगी रहती है। बेटी आकर कहती है मां ये झूठे ही रोता है, तो भी मां अपने काम में लगी रहती है। माता तो भगवान है, दूध है ये दूध भगवान का दर्शन है, और जो जिज्ञासु होता है वो बच्चा है। सच्चे ढंग से रोता है तो भगवान आते हैं, और सच्चे ढंग से नहीं रोता है तो माया रूपी बहन है उसको कहते हैं तू खिलाए रख, और वो बच्चा खिलौने में राजी हो जाता है तो माँ अपने काम में लगी रहती है। ऐसी दशा हमारी हो रही है, हम माया के साथ खेल रहे हैं, मान बढ़ाई के साथ खेलते हैं, भोग पदार्थों के साथ खेलते हैं, तो माँ अपने काम में लगी है। जो दिल से मान बढ़ाई नहीं चाहता उसके नजदीक मान बढ़ाई नहीं आती, और जाती भी है तो उसे गाली देते हैं तो वह कुछ नहीं कहता, और गाली को स्तुति समझता है तो उसको लोग कष्ट नहीं देना चाहते। जो स्तुति को गाली समझता है उसे लोग गाली स्तुति नहीं देते। लोग मान बढ़ाई खुश समझकर ही देते हैं कि ये खुश हो जाए। आप मान बढ़ाई से खुश मत हो, मान बढ़ाई आपसे दूर हो जाएगी। शास्त्र में तो लिखा है मान बढ़ाई विष्टा के समान है। जैसे विष्टा का दर्शन भी होता है, मन में ग्लानी पैदा करता है, ऐसे ही मान बढ़ाई यदि संभावना में भी दिखिया है कि ऐसा करने से मान बढ़ाई होगी तो ग्लानी होनी चाहिए। किसी प्रकार भी स्वीकार करनी पड़े तो अंदर से वासना मत रखो, ऐसे ऊपर से मान बढ़ाई आई ऊपर से निकल जाएगी। मैं संध्या गायत्री का चाहे जितना उपदेश देऊं पर मैं नहीं करूं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज संसार में लोगों पर असर कम पड़ता है। सत्संग की बातें कौन ऐसा है जो अच्छी नहीं कहता, परंतु लोगों पर असर क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए नहीं पड़ता है कि जो कहने वाले लोग हैं वे उसके अनुसार चलते नहीं है। मान बढ़ाई का विरोध मैं जितना करता हूं मैं उतना व्यवहार में ला नहीं पाया हूं। यदि मैं लाऊं तो आप लोग उसे कंटक समझेंगे। कभी आकर प्राप्त होने से हमको मान बढ़ाई मिल जाती है तो लोग हमारे प्रति तरह तरह का भाव लगाते हैं। कोई कहता है कि भाई जयदयाल ने नीति से मान बढ़ाई को स्वीकार किया है, कोई कहता है कि जयदयाल ने इस पर बड़ी दया की है इसलिए मान बढ़ाई को स्वीकार किया है, कोई कहता है कि जयदयाल के मन में कुछ तो मान बढ़ाई की चाहना है तभी तो स्वीकार किया है। लोग तरह तरह की बात सोचते हैं, लेकिन मैं उपदेश तो करता हूं मान बढ़ाई का त्याग की, लेकिन वैसा व्यवहार में यदि मैं पूरा लाऊं तो आज आप लोगों पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़े। आखिर में साधक उच्च कोटि में ही चढ़ता है, मान बढ़ाई से उसका कंठ पकड़ में आ जाता है। बहुतों को तो कंचन कामनी ने ही फंसा रखा है, रुपया मिले ब्याह हो जाए, परंतु जिसके त्याग है वही त्यागी है। उसमें भी व्यवहार का त्याग श्रेष्ठ नहीं है, हृदय का त्याग श्रेष्ठ है। विवाह होते हुए भी न करे, दिल में ब्याह करे तो वे त्याग नहीं है, कथन मात्र है। दिल से कंचन कामनी नहीं चाहता है वो त्याग है। मान बढ़ाई का त्याग इससे भी ऊंचे दर्जे का होता है, ये सूक्ष्म माया है। मान बढ़ाई का त्याग हो गया तो समझो सब कुछ हो गया। कंचन तजनो सहज है सहज त्याको ने, मान बढ़ाई ईरखो दुर्लभ तजबो ए। ये बहुत ऊंची सीढ़ी है, हर एक भाई बहन को ध्यान रखना चाहिए। ये पांचों प्लेग की बीमारी है। जो परम शांति चाहता है वह पांचों को विष के समान त्याग दे। कंचन कामिनी मान बढ़ाई और ईर्षा, ये पांच। फिर देखो आपको कैसे शांति मिलती है, कैसा आनंद होता है। चारों ओर आग ही आग लगी हुई है। जिसकी जैसी दशा होती है वैसी हालत हमारी समझनी चाहिए, ऐसी हमारी हो जाएगी। सबके हृदय में ऐसी सच्ची भावना होनी चाहिए। सच्ची भावना तभी आ सकती है जब तत्परता पूर्वक प्रयत्न करें। घर में आग लगी हो तो लोगों में कहता है भाई सहायता करो सहायता करो, चिल्लाता है। यदि कोई नहीं करता है तो अपनी तरफ से यथाशक्ति कोशिश करता है, लेकिन काम में तो उसकी अपनी लगाई हुई क्रिया ही आएगी। देखो इसी प्रकार मौत रूपी आग लगी हुई है, अब आपको माल बचाना है तो हर हालत में सरल से सरल उपाय करके बचाओ, हमारी दृष्टि में प्रभु की शरणागति है। प्रभु की पकड़ हमारे सब काम बनाने वाली है, साकार निराकार जो भी आप समझे उसकी शरण ले, यानी मन बुद्धि से उसको पकड़ लो, यानी परमात्मा है इसमें कोई शंका की बात मत रखो, यह बुद्धि से पकड़ना है। और वह सर्वांतर्यामी है, वह बंसी वाला है, धनुर्धर है, चतुर्भुज है, बस ये उसके स्वरूप को पकड़े रहो। मार्कंडे के पास यमराज जी आए, झट शिव जी को पकड़ लिया और कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, बस शंकर जी प्रकट हो गए और कहा कि जानता नहीं ये मेरा भगत है, भगो यहां से। यमराज जी ने कहा कि महाराज इसकी तो आयु पूरी हो गई इसलिए आया हूं। शंकर जी बोले तुम भूल में आओ, सबको मरने वाले यमराज और यमराज को मारने वाले शंकर होते हैं, निकल जाओ यहां से। यमराज जी निकल गए। तो हमारी बुद्धि में जमे हुए परमात्मा को आप पकड़ लो, जल्दी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो ये अंत में आकर मृत्यु आपको दबोच लेगी। आज तक आपने साधन नहीं किया, अब भी आप चेत जाओ, भगवान को मत छोड़ो, ध्यान से मन से परमात्मा को पकड़ लो। यदि कहो पकड़ा ही नहीं जाता, इसका मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे मन में परमात्मा की शरण में जाने की इच्छा ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कल्याण की इच्छा ही नहीं है। हर बात को पहले से ही मना कर देते हो, पहले प्रयत्न तो करो, फिर कोई समस्या आए तो बात करें। डूबते हो